डैड, मानव, नित्या ने इतना कहा ही था कि मिस्टर शेरगिल की घूरती आंखें उसकी तरफ घूम गई और वो बोलते बोलते चुप हो गई। उसने सर झुका लिया। मिस्टर शेरगिल उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। नित्या सर घुमाकर पीछे खड़े मानव को बेचारगी से देखती रही। मिस्टर शेरगिल ने नित्या को कार में बिठा दिया, फिर गार्ड की तरफ पलटते हुए बोले, अंदर लेकर आओ उसे। जी साहब। गार्ड ने तुरंत सर झुकाकर उनकी बात मान ली। मिस्टर शेरगिल अंदर बैठे और कार विला के अंदर चली गई। मानव पीछे खड़ा नित्या को खुद से दूर जाते देख रहा था। तभी वो गार्ड उसके पास आ गया। चलो, साहब ने तुम्हें अंदर बुलाया है। मानव चौंका, फिर कुछ सोचते हुए उसने सर हिला दिया और उस गार्ड के साथ चला गया, बिना ये जाने कि अंदर उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद मिस्टर शेरगिल किसी शहंशाह जैसे सोफे पर पूरे रुबाब के साथ बैठे सामने खड़े मानव को घूर रहे थे। नित्या पिलर के पीछे छुपकर खड़ी थी, क्योंकि मिस्टर शेरगिल ने उसे रूम में जाने को कहा था, लेकिन मानव को यहां उनके साथ अकेला छोड़कर जाने के लिए उसका दिल नहीं माना था, इसलिए वो छुपकर खड़ी हो गई थी। दादाजी रूम में थे। सर्वेंट ने जाकर उन्हें सब बताया तो वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। नित्या को पिलर के पीछे छुपे देखकर वो चौंक गए। नित्या ने तुरंत ही उन्हें इशारे में चुप रहने को कहा, तो उन्होंने भी अपनी पलकें झपका दी। मानव बेटा, कैसे हैं आप? दादाजी ने आते ही अपने पन से उसे गले लगा लिया। बस आपके आशीर्वाद से अब ठीक हूँ। आप बताइए, हम भी अब आपको देखकर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दादाजी मुस्कुराए। तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो हमारे साथ। इतने वक्त बाद आए हो तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। दादीजी ने मानव को अपने साथ ही बिठा लिया। मिस्टर शेरगिल आंखें छोटी छोटी करके दोनों को घूरे जा रहे थे। अब सख्त लहजे में बोले, आपको जो बात करनी है बाद में कीजिएगा, अभी हमें इससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तुम्हें मानव से क्या बात करनी है? नित्या के फ्यूचर को लेकर मुझे फ़ैसला करना है, और उससे पहले मेरे लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में बात करने के लिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है। मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। तो क्या अब मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के इससे बात कर सकता हूँ? मिस्टर शेरगिल काफ़ी चिढ़े हुए लग रहे थे। दादाजी ने सर हिलाया और इत्मीनान से बैठ गए। लगता है तुम्हारी बात ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले तुम ही अपनी बात ख़त्म कर लो। मैं यहाँ बैठा इंतज़ार करता हूँ। तुम्हारी ज़रूरी बात ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं बात कर लूँगा। मिस्टर शेरगिल को ये बात पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन वो जानते थे कि दादाजी उनकी सुनेंगी नहीं, और इस वक्त वो उनसे बहस करने के मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने दादाजी की मौजूदगी को नज़रअंदाज कर दिया और मानव की तरफ निगाहें घुमाते हुए सवाल किया, तुम आज भी ये दावा करते हो कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? मैं दावा नहीं करता, बल्कि मैं सच में नित्या से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कैसे विश्वास करूँ तुम पर कि तुम सच में नित्या से प्यार करते हो? उसकी दौलत के लालच में उसके पीछे नहीं पड़े। आपके इस शक को दूर करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। समझा, मैं आपको पहले ही बहुत चुका हूँ, लेकिन आपको जब मुझ पर ही विश्वास नहीं तो मेरी कही बातों पर भी नहीं होगा। अब तो एक ही तरीका है, आप आजमा कर देख लीजिए। जिस दिन आपको लगे कि नित्या के लिए मेरा प्यार दिखावा है, मेरी नज़र उसकी दौलत पर है, आप मुझे जान से मार दीजिएगा। मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन ऐसा दिन कभी आएगा नहीं, क्योंकि नित्या के लिए मेरा प्यार सच्चा है, और तब से है जब मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। आप माने या ना माने, लेकिन मैंने उसके बैकग्राउंड को देखकर उससे मोहब्बत नहीं की है। अगर वो आपकी बेटी ना होकर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, अनाथ होती, तब भी मैं उससे इतना ही प्यार करता, या शायद तब इससे भी ज़्यादा करता। मानव के कॉन्फिडेंस में कहीं ज़रा भी कमी नहीं थी। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा था, और यही उसकी सच्चाई का सबूत था। नित्या टकटकी लगाए मानव को देखने लगी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। अगर तुम्हें नित्या से इतना ही प्यार था, तो 6 महीने पहले बिना उसे कुछ बताए उसे छोड़कर क्यों चले गए थे? इन 6 महीनों में एक बार उससे मिलने, बात करने की, उसकी खबर लेने की कोशिश क्यों नहीं की? मिस्टर शेरगिल ने जबड़े भिंचते हुए सवाल किया। उन्हें हर वो पल याद आ गया था जब उन्होंने नित्या को मानव की वजह से दुखी या रोते देखा था। नित्या का दिल धक धक करने लगा। वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए घबराई निगाहों से मानव को देखने लगी, जिसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए थे। मैं अपनी मर्जी से नित्या को छोड़कर नहीं गया था, मेरी कुछ मजबूरियां थीं, और इतने वक्त तक नित्या से दूर रहने, उससे किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट ना करने के पीछे भी कुछ वजह थीं। उस वक्त वो ज़रूरी भी था, और नित्या के लिए सही भी। मुझे इन बहानों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या तो तुम मेरे सवाल का सच सच और सीधा सीधा जवाब दो कि तुम नित्या को छोड़कर क्यों गए, कहाँ थे इतने महीनों से, क्यों तुमने नित्या से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, और अगर तुम्हारे पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है तो दरवाज़ा वहाँ है, जा सकते हो तुम, और दोबारा कभी यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत, नित्या से दूर ही रहना। लहजा तलखी भरा था, और उनके एटीट्यूड से भरे कोल्ड बिहेवियर को देखकर दादाजी ने अपना सर पकड़ लिया था। जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये जवाब नित्या के सामने दूँ,
उसे भी पता चले कि मैं क्यों उसे छोड़कर गया, कहां और किन हालातों में रहा, क्यों उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। मानव की बात सुनकर मिस्टर शेरगिल भड़क उठे, लेकिन दादाजी ने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने, जब यहां बात नित्या की जिंदगी की हो रही है तो उन्हें यहां होना ही चाहिए। हम अभी उन्हें लेकर आते हैं, आज उनके सामने सारी बातें साफ हो जाएं, यही सही रहेगा। दादाजी उठकर खड़े हुए और उस तरफ चले गए जहां नित्या थी। नित्या के पास जाकर रुके तो वो इनकार में सर हिलाकर इशारे में उन्हें मना करने लगी, लेकिन दादाजी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पिलर के पीछे से निकाल दिया। मानव और मिस्टर शेरगिल दोनों ये देखकर चौंक गए। नित्या ने अपना सर झुका लिया। एक तरफ मिस्टर शेरगिल को उसकी ये हरकत नागवार गुजरी थी तो वहीं दूसरी तरफ मानव के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। नित्या, आओ बेटा, तुम हमारे साथ बैठो, दादाजी नित्या को अपने पास बिठाने लगे। तभी वहां मिस्टर शेरगिल की गुस्से भरी आवाज गूंजी, नित्या यहां आओ मेरे पास। नित्या चुपचाप जाकर मिस्टर शेरगिल के पास, लेकिन उनसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि नजरें उठा ले। मिस्टर शेरगिल ने मानव की नजरों को नित्या पर टिके देखा तो उन्होंने जबड़े भिंच लिए। आ गई नित्या, अब बताओ क्यों गए थे तुम बिना नित्या को कुछ भी बताए। मानव का ध्यान नित्या पर से हटकर मिस्टर शेरगिल पर गया और इसके साथ ही उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। मैं गया नहीं था, मुझे किडनैप किया गया था, मानव के शब्द उस सन्नाटे में गूंजे और वहां मौजूद तीनों लोग बुरी तरह चौंक गए। किडनैपिंग? नित्या की आवाज लड़खड़ा गई। हाँ किडनैपिंग, याद है तुम्हें वो दिन जब तुमने मुझे शाम को मिलने बुलाया था, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी लेकिन तुम नहीं आए थे। मैंने बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार भी किया था फिर भी तुम नहीं आए। उस दिन मैंने पार्टी रखी थी, अपने फ्रेंड्स और इनाया को भी पार्टी में बुलाया था, मैं सबको तुमसे मिलवाना चाहती थी लेकिन तुम आए ही नहीं, सब इंतजार करते करते बिना तुमसे मिले ही चले गए, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, मैं और इनाया दोनों ही परेशान हो गए थे। फिर इनाया ने मुझसे कहा कि तुम काम से शहर से बाहर गए हो जहां नेटवर्क इशू है, तुमने उसे मैसेज करके बुलाया है। इनाया ने मुझसे कहा था कि तुमने काम की वजह से उसे बुलाया है, तुम्हारे पास पहुंचकर वो तुमसे मेरी बात करवा देगी, लेकिन उसके बाद उसका नंबर भी स्विच ऑफ आने लगा, ना तुम आए और ना ही इनाया।
वो रात जैसे नित्या की आंखों के सामने घूमने लगी थी। उसने वो वक्त एक बार फिर जी लिया था, चेहरे पर नाराजगी थी और आंखों में फिक्र। मानव को भी वो सब एक बार फिर याद आ गया था। मैं आ रहा था तुमसे मिलने, घर से निकल भी गया था लेकिन तुम्हारे पास पहुंच नहीं सका क्योंकि रास्ते में ही मुझे किडनैप कर लिया गया था। झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हें किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा, तुम्हारे पास है ही क्या जिसके लिए कोई तुम्हें किडनैप करेगा। मिस्टर शेरगिल को उस पर रत्ती भर विश्वास नहीं था। मानव व्यंग्य से मुस्कुराया। टू बी कंटिन्यूड।